राधा माधवा चालू है राधा माधवा कुंजा बिहारे इसको टाइप करो हाँ टाइप करो जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन बल्लभ गिरिवर धार जना बल्लभ गिरिवर धारे सोदनंदन ब्रज जन रंजन छोटा छोटा माला नहीं है यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन सारी नतीरा वन सारी जय राधा माधव कुंज बिहार जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे सदानंदन ब्रज जन रंजन सदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहार उम ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानंजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च शेरूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साध्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार सूत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार श्रीलदास ठाकुर की निताय गौर हरि प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामदीरये नष्टप्रायश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर भवति निष्ठ की श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 10 श्री नंद उवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम् श्रीनन्द उवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम् श्रीनन्द उवाच अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम् માતાજી શબ્દાર્થ શ્રી નંદ ઉવાચ. નંદ મહારાજને ગર્ગ મુનિષે કહા, અલક્ષિત કંસ કે જાને બિના અસ્મિન ઈશ રહસિ એકાંત સ્થાન મે મામ કઈ, यहाँ तक कि मेरे संबंधियों द्वारा, अपि इससे भी एकांत स्थान, गो ब्रजे गोशाला में, कुरु संपन्न कीजिए, द्विजाति संस्कारम, द्विज बनने का संस्कार, संस्कारात् भवे द्विजः. स्वस्ति वाचन पूर्वकम्, संस्कार कराने के लिए वैदिक स्त्रोत के उच्चारण द्वारा, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद की, नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा, तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अत्यावश्यक है. तात्पर्य, नंद महाराज को संस्कार टालने की बात अच्छी नहीं लगी. अनेक अवरोधों के बावजूद वे चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए. यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है. चूंकि नंद महाराज वैश्य थे, इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था. पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सब. भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में इन संस्कारों के बिना समाज पशुओं का समाज माना जाएगा. गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद महाराज नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के रूप में, बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप में ही संपन्न कराना चाह रहे थे. अतः संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए. किंतु कलियुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं. मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हई उद्रुता. श्रीमद भागवतम स्कंद एक अध्याय 1 श्लोक 10 में इसका वर्णन मिलता है. इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं. वे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करते. किंतु नंद महाराज किसी बात की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे. उन्होंने सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य सम्पन्न करने के लिए उठाया. 5000 वर्षों के भीतर समाज कितना पतित हुआ है. मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या. मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यह शुद्धि संस्कार के निमित्त होता है. प्राचीन काल में पिता अपनी संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहते थे. किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं. जिससे उन्हें बच्चों के पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बच जाएं, जिससे उन्हें बच्चों के पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बच जाएं। अनुवाद दोहराएंगे। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा, तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अति आवश्यक है। तो इस श्लोक में नंद महाराज गर्ग मुनि को के इस शंका पर उन्हें समाधान दिया है। गर्गाचार्य जब नंद महाराज के यहाँ गए, वसुदेव जी ही प्रेरित किए थे, वसुदेव जी के कहने से ही गर्गाचार्य गए थे। वसुदेव जी को ज्यादा चिंता थी कि दोनों पुत्र तो उन्हीं के थे। इस बात को नंद महाराज नहीं जानते थे और वसुदेव जी भी इसको प्रकट नहीं करना चाहते थे। वसुदेव जी कभी भी यह नहीं प्रकट किए कि कृष्ण मेरा ही लड़का है, मैं ही रात्रि में नंद भवन में रह करके और पुत्री को ले आया था, कभी नहीं किए। वो जानते थे कि भविष्य में बात अगर खुल जाएगी तो बहुत संकट आ सकता है, इसलिए बहुत चतुराई से हर जगह बात करते थे कि जहाँ किसी को यह न मालूम पड़े कि नंद के यहाँ जो दो बच्चे हैं वसुदेव की हैं, वसुदेव के ही हैं। नंद भी यह नहीं जानते थे कि कृष्ण वसुदेव का पुत्र है। नंद महाराज के घर में वसुदेव जी वैसे ही बहुत चलाकी से अपने बच्चे को रख करके और पुत्री को ले आए थे। जैसे लोक में प्रसिद्ध है कि कोयल बहुत चलाक होती है, कोयल जो है अपने बच्चे को, अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है और कौवे के अंडे को गिरा देती है या अन्यत्र कहीं नष्ट कर देती है। कोयल बहुत चलाक होती है। वो पालन पोषण कौवे से कराती है अंडे को, और कौवे को भी ये पता नहीं रहता है ये मेरा ही अंडा है कि क्यों। उसी तरह नंद को और यशोदा को यह पता नहीं था कि ये कृष्ण वसुदेव का लड़का है, बहुत सीक्रेट था। तो वसुदेव जी के प्रेरित करने से गर्ग मुनि, जो उस समय के सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता थे, गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं और त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, काल की गणना करके हर चीज को जान जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में कैसे क्या चल रहा है। तो गर्गाचार्य जब गए तो उनका स्वागत किए नंद महाराज और उनके आने का प्रयोजन समझ गए, लेकिन गर्गाचार्य ने कहा कि अगर इस बात को आप पब्लिकली करेंगे, समूह में करेंगे, तो ये बात अगर कंस के पास जाएगी तो कंस को मालूम पड़ जाएगा कि ये जो लड़का है वसुदेव का है और आपके ऊपर संकट आ सकता है, इसलिए जो नामकरण संस्कार है इसको गोपनीय ढंग से करना चाहिए। और विशेष करके मैं यदुओं का गुरु हूँ, पुरोहित हूँ, गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित थे और उनके द्वारा अगर गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण संस्कार संपन्न होगा तो और शंका होगी कंस को। कंस को शंका इसलिए होगी क्योंकि उसको पहले से ही मालूम है, जोग माया ने बताया था कि तुम्हारा मारने वाला कहीं और जन्म लिया है। जिस लड़की को वसुदेव जी ले गए थे वो जोग माया थी और जेल में था वह तो बंद हो गई थी। जोग माया के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा था। भगवान की लीला जो है जोग माया के द्वारा संपन्न होती है। हर लीला को जो है स्थापित करना, उसकी व्यवस्था में कार्य करना जोग माया कार्य है। तो जोग माया ने ही सबको जोग निद्रा में सुला दिया था, गोकुल में भी और मथुरा में भी सब लोग सो गए थे, कोई नहीं जाना कि जेल के फाटक खुला भी और वसुदेव जी गोकुल गए फिर ले आए। जेल का फाटक खुल भी गया और सब कुछ संपन्न हो गया लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ा, केवल देवकी और वसुदेव दो ही लोग समझ पाए और कोई नहीं जाना। तो जोग माया को जब ले आए थे वसुदेव जी तो जैसे ही जेल में प्रविष्ट हुए पुनः सब ताले बंद हो गए, दरवाजे यथावत बंद हो गए और थोड़ा भी किसी को भनक तक नहीं लगी, चींटी रेंगने जैसा भी आवाज नहीं हुआ। चींटी रेंगने का तो आवाज नहीं होता है। मैं ऐसा कार्य संपन्न हुआ कि किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगा। कान पर जू रेंगना और जेल अपने आप बंद हो गया, स्वतः ऑटोमेटिक दरवाजा लगा था, नहीं लगा था लेकिन जोग माया ने कुछ समय के लिए सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया था, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया था। बड़े बड़े ताले थे अलीगढ़ के, मथुरा से अलीगढ़ नजदीक में है, अलीगढ़ का ताला फेमस है। और ताले के साथ में अलार्म भी लगाया गया था, जैसे गाड़ी में होता है ना कोई टच करेगा तो दरवाजों के ऊपर अलार्म लगा था, कोई टच करे, कोई बाहरी आदमी करे या कोई खोले तो आवाज़ होता है, बहुत जोर से सायरन बजता है। बहुत सारी सावधानियां बरती गई थी और इसके बावजूद बड़े बड़े प्रसिद्ध द्वारपाल मंगाए गए थे, दरवान बोलते हैं ना वॉचमैन को, और राज कहाँ से, बिहार से आए थे, मगध से दरवान मंगाए गए थे वॉचमैन, बहुत बड़े बड़े मूछ वाले, अपने दामाद के रक्षा में, अपने दामाद की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए कि कोई सुरक्षा में कहीं चूक न हो जाए। जरासंध ने बहुत बड़े बड़े मजबूत दरवान भेजे थे, दरवान ही हिंदी में बोलते हैं ना, पहरेदार, अब अंग्रेजी में वॉचमैन बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, बहुत चीज बोलते हैं, चौकीदार भी बोलते हैं। तो ऐसे मगध से आए थे, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ट्रेंड थे वो लोग, बहुत उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था, सब हथियार से लैस थे वो लोग, लेकिन वो सब धरे के धरे रह गए, किसी को मालूम नहीं पड़ा। इतनी तैयारी हुई थी, इतनी सावधानी बरती गई थी, लेकिन सब फेल हो गया। इसलिए भगवान की जो योजना है वही सफल होती है। जो भगवान चाहते हैं वही ना होगा। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम कितना भी मृत्यु से बचने के लिए कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी सुरक्षा में रहें, लेकिन मृत्यु को हम टाल नहीं सकते हैं। जो काल है, भगवान काल, भगवान ही काल हैं, तो काल से कौन वंचित हो सकता है। बहुत तैयारी करने के बावजूद भी सब कुछ फेल हो गया, सारी योजनाएं फेल हो गईं, क्योंकि भगवान की योजना को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ये प्रोवर्ब है। मैन परपोजेज, आदमी कोई भी परपोजल योजना कार्यान्वित करता है, उसको कार्य के रूप में परिणित करना चाहता है, लेकिन भगवान उसको विफल कर देते हैं। उसी तरह कंस ने बहुत सुरक्षा व्यवस्था ठीक किया था, बहुत सुरक्षा लगाया था, उस नगर में भी बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं था। मथुरा नगर में भी चारों तरफ चार दीवारी बनाई गई थी, इलेक्ट्रिक के वायर लगाए गए थे, कोई ऐसे अनजाना व्यक्ति नहीं आ सकता था। और जेल के अंदर जाना तो मुश्किल ही था, लेकिन सब कुछ उसके विपरीत हो गया। तो गर्गाचार्य इस सब बातों को कि उसी योग माया को जब कंस ने मारने के लिए उद्यत हुआ तो उसने कहा था कि तुम्हारा मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया है, तो इस बात पर उसको और संदेह होगा कि शायद गर्गाचार्य जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, ये नाम संस्कार के, तो हो सकता है कि ये वसुदेव का ही लड़का है। कुछ भी हो सकता है, भगवान की माया बहुत प्रबल है। कंस भगवान से कुछ के विषय में जानता था, इसीलिए लड़की को मारने के लिए गया था कि विष्णु बहुत मायावी हैं, वो लड़की का भी रूप ले सकते हैं। पहले कंस से ये हुआ था, शंकित हुआ था, ये लड़की है। देवता लोग आकाशवाणी में बोले थे कि लड़का होगा, लेकिन लड़की कैसे हो गई। जब कंस में गया ना तो देखा कि ये लड़की है। देवकी ने कहा कि भैया ये लड़की है, इसको मत मारो, तुम्हारी बधू बनेगी, तुम्हारी बहू होगी, मत मारो। तो कंस देखा कि लड़की कैसे हो गई, देवता लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं। तो फिर सोचा कि नहीं, विष्णु बहुत मायावी हैं, वो पूर्व काल में भी बहुत ऐसे माया किए हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का रूप ले लिए थे, हिरण्याक्ष को सर्वप्रथम मारे तो वराह का रूप ले लिए थे, तो लड़की बनना इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है विष्णु मुझे भ्रमित करने के लिए ऐसा किए होंगे। बलि का राज लेने के लिए बौना का रूप ले लिए थे, ये तो बहुत हैं। तो इसलिए उसके मन में हुआ कि जो भी हो विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है, बहुरूपिया हैं। भगवान विविध रूप बना लेते हैं, भगवान से बड़ा कोई बहुरूपिया नहीं हो सकता है, अनेक रूप बना लेते हैं, क्षण क्षण में भगवान रूप धारण करते हैं। बहुरूपिया तो एक रूप बनाने के लिए उसको बहुत मेकअप करना पड़ता है, बहुत समय लगते हैं। नहीं, भगवान कब, उनके लिए समय नहीं लगता है रूप बनाने में, रूप बदलने में। तो गर्गाचार्य कहे कि भविष्यवाणी के आधार पर कंस को विश्वास हो जाएगा कि ये गर्गाचार्य नाम संस्कार कराए हैं, मतलब ये लड़का जो है वसुदेव का ही है, तो बहुत बड़ी संकट आ जाएगी आपके ऊपर, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे इसलिए ये संस्कार मत कराइए। लेकिन नहीं नहीं मत करिए। लेकिन नंद महाराज देखे कि गर्गाचार्य जैसे महान मुनि आए हैं, इनका लाभ उठाना चाहिए, ऐसे योग्य पुरोहित हैं तो इनके द्वारा ही संस्कार कराना चाहिए। अगर योग्य पात्र है कोई तो उसका लाभ उठाना चाहिए। मान लीजिए आपके घर पर कोई बहुत योग्य विद्वान ब्राह्मण आया है तो उसको दान देना चाहिए, उसे पुरोहिती कार्य अन्य भी कोई आध्यात्मिक कार्य संपन्न करा लेना चाहिए। योग्य पात्र को देने से लाभ होता है। जैसे दान देना है तो लोग योग्य को देखते हैं कि ये अच्छा ब्राह्मण है। पात्र में दान, जैसे यहाँ दान पात्र बनाया गया है, सब लोग पात्र में दान देते हैं ना, पात्र में डालते हैं, ऐसा नहीं कि वो बाहर डस्टबिन में नहीं डालेंगे, बाहर भी पेटी रखा हुआ है डस्टबिन का, या आपके पॉकेट में ही डालेंगे। पूछेंगे कि किसी, कोई कोई लोग आते हैं पूछते हैं कि दान पात्र किधर है, तो सामने है, तो पात्र में ही डालना चाहिए। इसलिए पात्र के द्वारा ही कार्य संपन्न कराना चाहिए कि नहीं। किसी को खिलाना है तो बहुत भूखा है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट प्रसाद है, कोई बहुत भूखा है, उसको खाने की तीव्र आकांक्षा है, तो उसको खिलाने से ज्यादा लाभ मिलता है। मैंने नहीं, आपको नहीं खिलाऊंगा मैं, जो खा करके आ रहा है उसको बोलेंगे हम उसको खिलाएंगे, वो बोलेंगे नहीं हम नहीं खाएंगे, तो जो खाने के लिए बहुत स्पृहा रख रहा है, उसको भूख है तो उसको खिलाएंगे ज्यादा होगा। चाहे दीपक है आपके पास और अंधेरा है तो दीपक जलाएंगे, बोले नहीं हम दिन में जलाएंगे, दीपक है तो रात में अंधेरे है तो उसमें जलाने से उसका ज्यादा फल। वृथा दीपो दिवा पीछा, अगर वर्षा होती है किसान के खेत में तो उसका उपयोग होता है। वृथा वृष्टि समुद्रेशो, वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिवा पीछा। समुद्र में वर्षा हो तो क्या उसका लाभ है, और किसानों में किसान का खेती सूख रहा है, खेती अगर सूख रहा है तो वर्षा अगर वहाँ हो तो उसका उपयोग है। और तृप्त आदमी को भोजन कराना, कोई ब्राह्मण अभी किसी के घर से खा कर आया है यहाँ तक, उसको बोलेंगे हमारे यहाँ भी प्रसाद पा लीजिए, यहाँ तक खाया है, तो तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना, जो अतृप्त है भूखा है उसको खाने के लिए व्यग्रता है, वो खाना चाहता है तो उसको खिलाइए, तो बड़ा प्रसन्न होगा। वो पात्र है, खाने का कौन पात्र है, जो भूख से छटपटा रहा है। कभी कभी हम लोग प्रसाद रखते हैं, कोई आता है प्रभु जी खाने के लिए है आपके पास, हाँ एक प्लेट, बहुत खुश होता है वो खाएगा तो आपका आशीर्वाद देगा। तो पात्र देखना है, किसी के मान लीजिए कपड़े फटे हैं, किसी का कपड़ा फटा है, आपके पास कपड़ा है, बोलेगी आप में मुझे एक शर्ट दे दीजिए, हमारे कपड़े फट गए हैं, तो उसको देने से ज़्यादा लाभ है। आपके पास कपड़े हैं और कोई ऐसा पात्र आ गया कि मेरे कुर्ते फट गए हैं, तो अगर देते हैं तो उसका उपयोग ज़्यादा होता है। आ किसी के पास 100 कुर्ते हैं, बोलेंगे एक हमारा कुर्ता ज़्यादा है ले लो, तो मन से नहीं स्वीकार करेगा, ले भी लेगा तो हो सकता है डस्टबिन में डाल देगा कि इससे तो अच्छे मेरे पास ही है। कभी कभी दान में लोग देते हैं, हम लोग प्रोग्राम में कभी जाते हैं ना, तो लोग दान में देते हैं धोती कुर्ता चादर, तो कभी कभी धोती ऐसा होता है कि उसमें आटा चाल सकते हैं तो ब्राह्मण लोग खुश नहीं होते हैं, अंदर साप देते हैं कि क्या दिया है ये, बहुत बदमाश है। अरे दिया भी तो काम का नहीं है, लोग पहनते नहीं है तो देने का क्या लाभ है। वो दिया ब्राह्मण लेते समय भी गाली देते हैं, मन में साप देते हैं कि क्या ये दिया है, भले उसके सामने नहीं लेकिन बाद में। और लिफाफा भी देखेंगे वहां नहीं, बाद में देखेंगे। एक बार महाराज जी कतरे की भक्त लोग बाथरूम में जाकर देखते हैं, कोई कोई लोग देखने के लिए बाथरूम बहाना करके जाते हैं, उधर जाकर देख कर आते हैं और पूछते हैं आपको कितना मिला है। अब किसी को मान लीजिए ज्यादा मिला है तो बोलेंगे मुझे तो बहुत कम मिल गया है। तो दान पात्र को देना चाहिए, और दे जो दे रहे हैं वो मैंने अच्छा चीज हो जो प्रयोग कर सके, यूज कर सके। तो पुराणों में कठोपनिषद में कथा है नचिकेता का, कठोपनिषद में है ना, नचिकेता का पिता जो है यज्ञ करा रहे थे, तो यज्ञ में ब्राह्मणों को बूढ़ी गायें दान कर रहे थे, अच्छी गायों को नहीं दे रहे थे, जो बूढ़ी गायें थी जो दूध नहीं दे उन लोगों को दान कर रहे थे। नचिकेता ने कहा कि पिताजी इन बूढ़ी गायों को क्यों दे रहे हैं अरे देना है तो अच्छी गायों को दीजिए, ये ब्राह्मण लोग ले जाकर क्या करेंगे बूढ़ी गाय को दे रहे हैं तो क्या करेंगे, ले जाकर कत्लखाना में दे देंगे। उस समय कत्लखाना नहीं थे, अगर किसी को देना है तो अच्छा गाय दीजिए कि वो उसका लाभ उठा सके। तो नचिकेता बार बार कह रहा था कि क्यों इन गायों को दे, बूढ़ी गायों को दे रहे हैं। तो उसके पिताजी कहे कि तुम ही को दान दे देता हूं, ऐसे कर लंबी कथा है। तो यहां पर नंद महाराज उस योग्य की एक योग्य ब्राह्मण योग्य पुरोहित हैं गर्गाचार्य, ये आए हैं तो इनके द्वारा कार्य संपन्न कराना चाहिए, उनको दान देना, उनको खिलाना, उनको सेवा करना, इसका लाभ होगा। और ये संस्कार करेंगे तो हमारे पुत्रों को भी लाभ मिलेगा। इनके विषय में भूत में भविष्य में क्या होगा, पहले क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, इनका भविष्य कैसा होगा सब बताएंगे। लोग पहले बताते थे, लोग कुंडली बना करके लोग विचार करते थे कि लड़का कैसा होगा, पहले क्या था। तो इसका लाभ उठाने के लिए गर्गाचार्य से निवेदन किए कि नहीं ऐसा करते हैं कि हम इसको बहुत गोपनीय ढंग से इस संस्कार को कराएंगे और किसी को हम इनवाइट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपने संबंधियों को भी पड़ोसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि गौशाला में करते हैं, गोब्रजे जहाँ गायें रहती हैं उसको गोब्रजे, ऐसे पूरा ब्रजमंडल ही गौशाला है। ब्रज मने गायों का रुकने का स्थान या गोकुल, गोकुल का अर्थ भी होता है जहाँ गायों का समूह रहता है। ब्रज जो है हर जगह गायें रहती थीं, नंद महाराज पर 9 लाख गायें थीं, तो अन्य ब्रजवासियों के पास भी बहुत गायें थीं, तो ब्रज पूरा गायों से अलंकृत था, गाय गोपी से अलंकृत था ब्रज, सब लोग गाय बहुत अधिक संख्या में गाये थे, इसलिए ब्रज कहते हैं। ब्रज मने गायों को ठहरने का जगह। तो गो ब्रजे आप अलक्षित ढंग से बहुत गोपनीय ढंग से इसको संपन्न करेंगे और गोशाला में करेंगे। नंद महाराज ने कहा कि हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की गौशाला में ही द्विज संस्कार पूरा करें, जिसे और तो और मेरे संबंधी तक नहीं जान पाए। ये जरूरी था संस्कार को। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नंद महाराज इसको टालना नहीं चाहते थे कि ऐसे योग्य पुरोहित आए हैं, ये फिर पता नहीं कहाँ रहेंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आए हैं तो कराना ही है। तो जैसे भी हो बिना तड़क भड़क के, तात्पर्य में लिखे बिना नामकरण संस्कार को बिना तड़क भड़क के गुप्त रूप में संपन्न कराना चाह रहे थे, बिना कोई सजावट के, बिना कोई उत्सव के, बिना गाजा बाजा के, बिना किसी को निमंत्रण के, बिना भोज भात के। भोज भात जानते हैं हम लोग। भोज खिलाना ये भी नहीं हुआ। नाम संस्कार होता है तो बहुत उत्सव होता है, बड़ा सजाया जाता है, बहुत लोगों को बुलाया जाता है, बाजा बजाने वाले आते हैं, गाने वाले लोग आते हैं, चारण भाट ये सब गाने के लिए आते हैं, हम लोग देखे हैं। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं, सोहर गाती हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण आते हैं, बहुत मतलब प्रोग्राम होता है बड़ा। लेकिन नंद महाराज कहे कि नहीं, आप करिए, हम बिना तड़क भड़क के, बिना किसी को आमंत्रित किए हुए, बहुत गोपनीय ढंग से करेंगे और गौशाला में करेंगे, कोई जाने ना, पड़ोसी भी ना जानेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलि युग में प्राय संस्कार लोग भूलते जा रहे हैं। आज से 5 वर्ष पहले और आज के तुलना में आजकल लोग कोई संस्कार जानते ही नहीं है। पहले सब संस्कार होता था, जन्मजात संस्कार, उसके पहले गर्भाधान संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। तो अतः संस्कार अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए, किंतु कलि युग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं। मंदा सुमंद मतयो, लोग पशु की तरह केवल अपने जीवन को धन उपार्जन के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो समझते हैं कि मनुष्य जीवन केवल गधे की तरह परिश्रम करो, आहार निद्रा, बस इतना ही मानते हैं लोग। आज वर्तमान में हर व्यक्ति यही सोचता है कि खूब परिश्रम करो और खाओ पियो मौज करो, बस यही लोग जानते हैं। जितना हो जैसे भी धन उपार्जन करो, और पढ़ाई का भी शिक्षा का भी एक ही उद्देश्य है। पहले शिक्षा का उद्देश्य था संस्कार लोग, शिष्टाचार आचरण, शिक्षा का मूल्य जो है गिर गया है। आज लोग शिक्षा का उद्देश्य है केवल धन कमाना कैसे भी। पहले शिक्षा मतलब लोगों को संस्कार सिखाया जाता था, ईमानदारी, ईमानदार होना, अनुशासन में रहना, इंद्रिय निग्रह करना, जितेंद्रिय होना, सब साफ सफाई रहना, समो दमो तपस्वचम शांति राज्य में वच। लेकिन शिक्षा, आज शिक्षा का उद्देश्य है समाज में बहुत बड़ा अपने को पद प्राप्त करना और बहुत धन संचय करना और भौतिक सुख भोगना, शिक्षा का ये उद्देश्य है। पहले शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे, उसमें उसका उनको उनका चरित्र निर्माण कराया जाता था, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गुरुकुल में सिखाया जाता था। लक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। मनुष्य जीवन लाखों जन्मों के बाद मिलता है और यह शुद्धि संस्कार के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपनी संतानों को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार से सहायता करने में उत्सुक रहते थे, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें बच्चों के पालन पोषण के लिए उत्तरदायित्व से बच जाएं। पहले लोग अपने बच्चों को संस्कार सिखाते थे, जैसे उदाहरण के लिए सत्यवान जो है के माता पिता राजा थे, लेकिन किसी कारणवश उनका राज्य जो है चला गया था। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा करता था और जंगल से लकड़ी काट करके उसको बेच करके अपने माता पिता की सेवा करता था। माता पिता को छोड़ करके कभी इधर उधर नहीं जाता था। माता पिता अंधे हो गए थे, यद्यपि राजा थे लेकिन राज उनका चला गया था। कभी कभी राजा भी सामान्य व्यक्ति हो जाता है, कोई दूसरा राजा उसका राज हड़प लेता है। तो बहुत गरीब हो गए थे वो लोग और जंगल में का आश्रय लिए थे, राजाओं के भय से जंगल का आश्रय छुप गए थे। जैसे हुमायूं जो है शेर शाह के भय से जंगल में छुप गया था, शेर शाह को हरा करके मुगल बादशाह शेर शाह राजा बना था, जो सासाराम में जिसका ये था मकबरा है उसी के नाम पर उन्होंने एक रोड बनाया था कलकत्ता से दिल्ली, शेर शाह सूरीपथ के नाम से जाना जाता है। तो 5 साल में बहुत काम किया था, तो उसके भय से हुमायूं जो है जंगल में छुप गया था। वो जंगल में जब था तो उसी समय उसको एक संतान हुआ था। उस संतान के अथु में उसने अपने मित्रों में कस्तूरी बांटा था, मृग कस्तूरी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जिस तरह से कस्तूरी की सुगंध फैल रही है वैसे तुम्हारे बालक का जस फैलेगा। तो हुमायूं का लड़का अकबर जो है बाद में वो बादशाह बना। उसी तरह अनेक घटनाएं इतिहास में, वैदिक इतिहास में भी, कि वो सत्यवान जो है जंगल में अपने माता पिता को लेकर, कि राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, राज से वंचित होने के बाद भी भय रहता था कि वो राजा फिर तैयारी करके मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, तो जंगल का आश्रय लिए थे। तो सत्यवान बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, अपने माता पिता की सेवा करता था और जंगल से लकड़ी चुन करके उसी को बेच करके माता पिता की सेवा करता था। ऐसे ऐसे हुए हैं। तो एक दिन राजपुत्री सावित्री, उसके पिताजी, ये कथा आप लोग जानते हो, अब आप जानते हैं ना ये कथा, आप नहीं जानते। तो सावित्री के पिता ने कहा कि तुम अपना सावित्री और सत्यवान की कथा पुराणों में, आप लोग नहीं जानते हो, कितने लोग जानते हैं? 4 लोग जानते हैं, तो आधा ही उठा रहे हैं, पूरा हाथ नहीं उठ रहा है। तो सावित्री के पिता ने कहा कि तुम्हारे योग्य मैंने वर आज तक ढूंढ नहीं पाया। सावित्री के पिताजी अपने पुत्री के अनुरूप वर नहीं ढूंढ पाए थे। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे राजा रेवत जो है रेवती के लिए योग्य वर ढूंढ ही नहीं पाए थे, रेवती के लिए वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारी पुत्री को जन्म दें उसके लिए पति भी तो बनाए होंगे, तो ब्रह्मा जी कह के बनाए हैं। कभी कभी होता है कि लड़की के गुण शूल रूप के अनुसार कोई वर नहीं मिलता, ऐसा भी होता है। तो राजा ने कहा कि तुम अपने रूप गुण शील के अनुसार अपना पति स्वयं ही ढूंढ लो। तो सावित्री जो है का देखिए, वो भी बहुत, उसका चरित्र कितना ऊंचा था, शहर में नहीं गई वो, अपना पति चयन कर जंगल की ओर गई, ऐसा शिक्षा दिया जाता था। आजकल ये होगा तो लोग जाएंगे फिल्म सिटी जाएंगे देखने के लिए, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, इधर जाएंगे ढूंढ। लेकिन सावित्री जो है जंगल की ओर गई और जंगल के ऋषियों के आश्रम पर घूम रही थी। मंत्री लोग कहे कि जंगल में क्यों जा रही हो, इधर क्या है, शहर में नगर में पति ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तो वो ऋषि कुमार सत्यवान को, उसके माता पिता ऋषि ही थे, राज ऋषि राजर्षि, तो देखी कि जंगल में देखी कि ये व्यक्ति जो है अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है। उसके सदाचार और सेवा भाव से प्रभावित हो गई सावित्री। ये नहीं कि बहुत मेकअप नहीं किया था, कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना था, वास्तविक सौंदर्य जो है हमारा चरित्र की सुंदरता है। सुंदरता क्या है, ये बाह्य सुंदरता है, असली सुंदरता जिसका स्वभाव चरित्र वो सुंदरता है। गुण गुण की पूजा होती है, रूप से ज्यादा महत्व गुण का होता है। कोयल काली होती है लेकिन उसका गुण है कि मीठी बोलती है, तो गुण का ज्यादा महत्व होता है। तो सावित्री ने उसका बाह्य स्थिति नहीं देखा कि ये गरीब है सुंदर नहीं है, उसका गुण देखे, उसका सेवा भाव, माता मातृ पितृ भक्त है, यह देखकर अपने मन में ने कि यही हमारा पति हो सकता है योग्य। तो वैदिक काल में अनेक ऐसी कथाएं हैं, आज वर्तमान में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अपने संतान को पढ़ने के लिए स्कूल में गुरुकुल में भेजते हैं, उसको शिष्टाचार सदाचार सिखाते हैं। और बहुत ऐसे धनी परिवार के लोग भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। वो चाहे तो लंदन भेज सकते हैं, अमेरिका भेज सकते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों में संस्कार सिखाना, सेवा के लिए सेवा भाव उनमें देने के लिए, सेवा करने के लिए सिखाना। बहुत बहुत धनी परिवार में भी लोग गाय की सेवा करने के लिए आते हैं, बच्चों से भी गौ सेवा कराते हैं। कोई अतिथि आ गया तो उनका बोलेंगे उनका पांव प्रक्षालन करो, उनको संस्कार डालने के लिए चाहता है। किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चों तक, अपने बच्चों को तो पालने के बाद लोग मार देते हैं, संस्कार की तो बातें ही दूर है। बच्चों को जो लोग बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते हैं, बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं, तो वो बच्चे देने का जो महत्व है, शास्त्र में कहा गया है कि वही माता पिता, वास्तविक माता पिता हैं जो अपने बच्चों को संस्कार और मुख्य रूप से भक्ति, कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। वही माँ है जो अपने संतान को कृष्ण भक्त बनाती है। अर्थात तो बच्चे तो सुअर और कुतिया भी जन्म देती हैं, जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण जी भी साथ में जाने के लिए उद्यत हुए, तो भगवान राम कहे कि वन में तो केवल मुझे जाने का आदेश है, और आप आना चाहते तो अपनी माँ सुमित्रा से आदेश ले लो। तो लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए, कहे कि मैं वन जाना चाहता हूँ। तो माँ सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई, कहे कि वन जाना चाहते हो तो मेरे पास आने की आवश्यकता थी, आप आया कि वहीं से चले जाना चाहिए। सुमित्रा ने कहा कि राम की सेवा अगर करोगे, राम का अनुगामी बनकर, तो मुझे पुत्र पैदा करने का जो सौभाग्य है वो प्राप्त होगा। इस संसार में पुत्रवती वही स्त्री है जिसका संतान भगवान का भक्त है, और भगवान के भक्त नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे तो संतान देखिए तो सुवरी कितना बच्चा देती है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं सुवरी और कुतिया सुवर के दर्जनों बच्चे होते हैं साल में। तो बच्चा उत्पन्न करना ही ये नहीं है, उसको अगर कोई कृष्ण भक्ति में नहीं लाया तो समझिए कि वो बच्चा पैदा करना व्यर्थ ही है। उससे तो अच्छा है कि ना पैदा करे। सुमित्रा जी का ये है, सुमित्रा जी ने कहा कि तुम अगर राम की सेवा करोगे तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, तब मैं पुत्रवती इस संसार में पुत्रवती ज्योति कहलाने के लिए तब मैं हकदार बनूंगी। पुत्रवती ज्योति जगत सोई, हरिहर भक्त जासुसुत होई, नतर बांझ बरु बांध बियानी, राम विमुख सुत जानते हुए। राम से कृष्ण से विमुख अगर संतान है तो माता पिता व्यर्थ ही संतान पैदा किए, व्यर्थ ही 9 महीने गर्भ धारण किए। तो पहले मतलब संस्कार हर परिवार में सब संस्कार दिखाया सिखाया जाता था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहले हर घर में लोग शालिग्राम रखते थे, भोग लगाते थे, आरती करते थे, सब सिखाते थे लोग। अब ये सब संस्कार लुप्त तो हो गया है, यहाँ तक कि बच्चों संस्कार की बात प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मार देते हैं कि कौन पालन पोषण। इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेशों को स्वीकार नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब क्या जरूरत है, अरे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, उनको हीरो बनाओ, उनको बड़ा पैसा कमाने के लिए हुनर सिखाओ। लोग बोलते हैं कि भक्त बन जाएंगे तो कि खाने का कहाँ से आएगा। कभी कभी लोग जाएंगे आप किसी को तो बोलेंगे कि ये लड़के को ले जाइए भक्त बना दीजिए स्वामी जी, जो लड़का काम लायक ना हो पढ़ा लिखा ना हो, तो लोग बोलेंगे कि ये हमारे लड़के को ले जाइए ना भक्त बना दीजिए। एक जगह हम लोग गए थे गांव में, तो एक लड़का था थोड़ा विकलांग था, तो उसके घर वाले बहुत पैरवी कर रहे थे कि इसको ले जाइए ना प्रभु जी भक्त बना दीजिए। तब मैं कहा कि जो लड़का इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसको दे दीजिए। बोले नहीं नहीं इसको ले जाइए, वो काम का नहीं है उनके लायक, उनके ऊपर भार समझ रहे थे। अब बेचारा लंगड़ था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो सोचते थे कि ये भार ही है, इसको मंदिर में भेजते हैं। तो हम कहे कि इसको घर में रखिए और जो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको दे दीजिए। भक्त भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त को भी अपने संतान को कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमारा लड़का भक्त न बने, हम ही फंस गए हैं। उसको डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं। जो भक्त मंदिर में आश्रित हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि मंदिर जाए, मंगल आरती जाएगा तो ये हो जाएगा। अब जाना मत कहीं, आप पढ़ाई करो। अगर सुबह शाम भी आता है तो बोले मत क्या जरूरत है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, सोचते हैं कि हाथ से निकल जाएगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कलियुग का ये प्रभाव है। वास्तव में भक्त बनाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी, अगर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं एक केमिकल फैक्ट्री में मैनेजर था, तो केवल फैक्ट्री के अंदर ही रह जाता है, लेकिन भक्त बना तो पूरे संसार में लोग जान गए। प्रभुपाद जी की माँ रजनी ने नाम था, रजनी, उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी और उनके पिताजी उनको भक्त बनाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी बाद में लेक्चर में कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मैं केवल फैक्ट्री में ही रह गया होता तो फैक्ट्री के अंदर 200-500 लोग ही जानते, लेकिन भक्ति के प्रभाव से पूरे विश्व में जो है कितना इंडस्ट्री बना दिए। ये हरे कृष्ण लैंड कितना 7 इंडस्ट्री के बराबर है, इसमें कई हजार लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक उन्होंने इंडस्ट्री बनाया है। चलो प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट 0 है लेकिन केवल प्रॉफिट है। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि हमने 40 रुपये लेकर गए लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, केवल लेना है। प्रभुपाद जी पूरे विश्व में हजारों बड़ा बड़ा मंदिर इंडस्ट्री जैसा है। इंडस्ट्री में क्या होता है, लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये मंदिर में कितने लोगों को काम मिला है, रोजगार मिला है, भक्ति के साथ में कितने लोग कार्य कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में अगर देखिए तो कितना कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं, हजारों हजार ऐसे ऐसे जगह हैं जहां लोग कार्य कर रहे हैं, भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। तो इंजीनियर बनना बेहतर था प्रभुपाद जी के लिए कि भक्त बनना बेहतर था? प्रभुपाद जी अपने जीवन में तुलना किए कि अगर इंजीनियर इंजीनियरिंग करके वहीं तक सीमित रहता तो वो घाटे में का सौदा था। बिल्कुल घाटे का सौदा हो रहा था। अगर कोई बहुत बड़ा प्रचारक बन जाता है तो वो सबसे बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, भौतिक दृष्टि से समझिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से। ये सब चीजें समझने की चीज है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अपने बच्चों को अगर भक्त बना देता है, अच्छा अच्छा ट्रेनिंग दे करके अच्छा भक्त बना देता है तो वो इंजीनियर से भी ऊपर है। कई इंजीनियर उसके फॉलोअर हो जाते हैं, कई डॉक्टर, कई साइंटिस्ट उसके शिष्य बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान है, इसको सही रूप में अगर कोई स्वीकार करे और अपने को ऐसा तैयार करे तो ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और साइंटिफिक लेवल का ये चीज है, सबसे बड़ा चीज है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जिस रूप में इसको स्थापित किया है उस रूप में अगर लोग इसको लें और अपने को उस तरह से बनाएं तो पूरे विश्व में वो उनकी पूजा हो सकती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, प्रभुपाद जी की पूरे विश्व में पूजा होती है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा को अपने देश में पूजा होती है। और कभी कभी पदच्युत हो जाता है, कभी कभी दूसरे राजा लोग उसको हटा देते हैं। जैसे सुबुद्धि राय राजा थे, बाद में उनका चपरासी राजा बन गया। लेकिन ये ऐसा एक पद है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, न कोई चोरी कर सकता है, न कोई बांट सकता है। ये एक ऐसा साम्राज्य है जिसको कोई आपको हटा नहीं सकता है। श्री प्रभुपाद जी अनादि काल से रहेंगे, उनका जो पद है, जो सम्मान है, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई आया हटा कर बैठ जाएगा। वो बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। राजा है तो दूसरा उत्तराधिकारी हो जाता है, दूसरा राजा युद्ध करके परास्त करके ले लेता है, तो विद्वान भक्त श्रील प्रभुपाद जी जैसे अपने को अगर कोई वैसा बनना चाहता है तो उसके पूरे विश्व में लोग उसकी पूजा करते हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की पूरे विश्व के लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पद है ना। तो हर गृहस्थ को, अपने संतान को, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर गृहस्थ को कम से कम एक बच्चे को ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा शिक्षा देना चाहिए, कम से कम एक परिवार में एक लड़का जो है भक्त बने, तो पूरा विश्व जो है सुखी हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विश्व तभी सुखी हो सकता है जब विश्व में कृष्ण भावना हर जगह प्रसारित होगा। कृष्ण भावना के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। आप कितना भी आविष्कार कर लीजिए, कितना भी भौतिक संसाधन जुटा लीजिए, सुखी होने का यही एक साधन है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णव।